بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، اپنے آج کے کاریکرم کا آرمبھ ہم سورہ شمس کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ تلاوت کا شرح پراپت کیا ہے سورگیے محمد صدیق منشاوی نے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل
صدق اللہ العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، سوگند ہے سوریہ کی اور اس کے پرکاش کی اور چندرما کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ دھرتی کو پرکاشت کر دے، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آکاش کی سوگند اور جس نے اسے اٹھایا، اور دھرتی کی اور جس نے اسے بچھایا، اور آتما کی اور جس نے اسے ٹھیک کیا، پھر اسے برائی اور بھلائی کا مارگ دکھا دیا، निश्चित रूप से वही सफल रहा जिसने अपनी अंतरात्मा को पवित्र बना लिया, और दुर्भाग्य हुआ जिसने उसे पापों से दूषित कर लिया। समूद जाति ने अपनी उद्दंडता के कारण पैगंबर को झुटलाया। जब उनमें का सबसे बड़ा दुर्भागी उठ खड़ा हुआ तो अल्लाह के पैगंबर ने उनसे कहा, अल्लाह की ऊंटनी और उसके पानी पीने के स्थान का ध्यान रखना। किंतु उन्होंने उसे झुटला दिया और उस ऊंटनी की हत्या कर दी, तो उनके पालनहार ने उनके पाप के कारण उन्हें दंडित किया और उन्हें तथा उनकी बस्ती को मिट्टी में मिलाकर बराबर कर दिया, और उसे इस दंड के परिणाम का कोई भय नहीं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, आज शुक्रवार है, अक्टूबर की 7, रबीउल अव्वल की 10 और मेहर माह की 15 तारीख। कार्यक्रम में आप पहले की ही तरह विश्व समाचार सुनेंगे, फिर उसके बाद हम आपको राजनीतिक चर्चा सुनवाएंगे। राजनीतिक चर्चा के बाद आपका मनपसंद कार्यक्रम पत्र संसार पेश किया जाएगा, और हमारी आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा विज्ञान की डगर। तो श्रोताओं, ये थी रूपरेखा। अब कुछ ही क्षणों में विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। अमेरिका ने फिर ईरान के विरुद्ध नए प्रतिबंध लगाए हैं। ईरान में दंगे भड़काने में लिप्त फ्रांस के 2 जासूस गिरफ्तार किए गए। किम जोंग उन का कहना है कि अमेरिका के मुकाबले में पुतिन का प्रतिरोध प्रशंसनीय है। कर्नाटक में एक मदरसे में प्रदर्शनकारियों ने घुसकर पूजा पाठ किया। और अब आप विस्तार से कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। ईरान के विरुद्ध अमेरिका की शत्रुतापूर्ण नीतियों का क्रम जारी है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने ईरान के विरुद्ध नए प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए ईरान के गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री को ब्लैक लिस्टेड किया है। कुछ दिन पहले भी अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने एक बयान में ईरान के विरुद्ध नए प्रतिबंधों का ऐलान करते हुए 10 कंपनियों और समुद्री जहाज को तेल के निर्यात में सुविधा प्रदान करने के बहाने अपने गैर कानूनी प्रतिबंधों की सूची में शामिल किया था। जो बाइडेन ने 3 अक्टूबर को ईरान में दंगाइयों और असामाजिक तत्वों का समर्थन करते हुए कहा था कि ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। विदेश मंत्री ने इराक के विदेश मंत्री से टेलीफोन वार्ता में इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र से आतंकी गुटों की गतिविधियों के बारे में सचेत किया है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि जैसा कि हम इराक के साथ अच्छे संबंधों के विस्तार का सम्मान करते हैं और इसके लिए दृढ़ संकल्प भी रखते हैं, किंतु हम इन गुटों के हमलों और आतंकी कार्रवाइयों के क्रम को सहन नहीं कर सकते जो इराकी कुर्दिस्तान क्षेत्र में शरण लिए हुए हैं और ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा को निशाना बना रहे हैं। ईरान में दंगे भड़काने में लिप्त फ्रांस के 2 जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें स्वीकार की हैं। पर्यटक के रूप में ईरान आने वाले फ्रांस के 2 जासूसों ने गिरफ्तार होने के बाद ईरान में तनाव पैदा करने और ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध कार्रवाइयां करने की बात स्वीकार की है। گرفتار ہونے والے ان دو فرانسیسی جاسوسوں نے خود کو دمپتی بتایا ہے جن کا سمبندھ فرانس کی ودیشی سرکشا سیوا سے ہے. اپنے اقبالیہ بیان میں انہوں نے اہم رازوں کو فاش کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ انہیں ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ ایران کے حالات خراب کرنا ہے تاکہ اس پرکار ایران کی اسلامی ویوستھا کو نقصان پہنچایا جا سکے. اتری کوریا کے نیتا نے کڑے پرتیروت کے کارن پوتین کی پرشنسا کی ہے. امریکہ کے مقابلے میں ڈٹے رہنے کے کارن اتری کوریا کے نیتا نے روس کے راشٹرپتی پوتین کی سراہنا کی. اتری کوریا کی سرکاری سماچار ایجنسی کے انوسار اس دیش کے نیتا کم جونگ اون نے کہا ہے کہ ورتمان سمے میں روس پوری شکتی کے ساتھ امریکہ اور اس کے پٹھوؤں کے سامنے دڑھتا کے ساتھ کھڑا ہے, جو سراہنیہ کام ہے. کم جونگ اون نے کہا کہ اس پرکار کی واستوکتا دڑھ اچھا شکتی اور اسادھارن نیتتو کے بنا سمبھو ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ولادیمیر پوتین کے نیتتو میں روس ادھک سشکت ہوا ہے. اتری کوریا کم جونگ اون نے روسی راشٹرپتی ولادیمیر کو ایک پتر بھیجا ہے. اس پتر میں انہوں نے دیپکشی سمبندھوں کو ادھک مضبوط بنانے پر بھی بل دیا ہے. چین کا ماننا ہے کہ کوریا پرایدویپ میں جو اشانتی ہے اس کا مکھیہ کارن امریکہ ہے. سنیوکت راشٹر سنگھ میں چین کے استھائی پرتندھی کے سلاہکار نے کہا ہے کہ کوریا پرایدویپ میں جو اشانتی پائی جاتی ہے اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے. گلوبل ٹائمز کے انوسار جنگ شوانگ نے کوریا پرایدویپ میں امریکہ کے سینیہ گٹھ بندھن کو سدڑھ کیے جانے کی اور سنکیت کیا. انہوں نے کہا کہ اس کھیتر میں شانتی کیول وارتا سے ہی استھاپت ہو سکتی ہے. چین کے پرتندھی کا کہنا تھا کہ امریکہ کو پوری ایمانداری کے ساتھ اتری کوریا کی چنتاؤں کو سمجھنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے سے وارتا کی بھومیکا پرشست ہوگی. اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ سنیوکت راشٹر سنگھ کی سرکشا پریشد کو بھی کوریا پرایدویپ کے سنکٹ کے سمادھان کے پرتی سارتھک بھومیکا نبھانی چاہیے. ترکیے کے راشٹرپتی کا کہنا ہے کہ سیریا کے راشٹرپتی کے ساتھ ان کی بھیٹ وارتا فی الحال نہیں ہو پائے گی. اسپوتنک سماچار ایجنسی کے انوسار رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ورتمان سمے میں سیریا کے راشٹرپتی کے ساتھ میری ملاقات سمبھو نہیں ہے. انہوں نے آگے کہا کہ بھوشیہ میں یہ سمبھو ہو سکتا ہے لیکن ابھی نہیں. اردوغان نے چیک گنراج کی راجدھانی میں کہا کہ یہ سمبھو ہے کہ اچت سمے اور صحیح پرستھتیوں میں ترکی تتھا سیریا کے راشٹرپتیوں کی بھیٹ وارتا ہو, لیکن یہ بھوشیہ میں ہی سمبھو ہے. اس سے پہلے ترکی کے راشٹرپتی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں سیریا کے ساتھ ادھک کام کرنا چاہیے اور اس کھیتر کے لیے رچے گئے شڈینتروں کو وفل بنانا چاہیے. اردوغان کا کہنا تھا کہ ہمارا لکش بشار اسد پر وجے نہیں, بلکہ ہم تو اتری سیریا اور پوروی فرات میں آتنکواد کے ورودھ سنگھرش کرنا چاہتے ہیں. بھارت کے کرناٹک راجیہ کے بیدر ضلع میں دشہرے کی ریلی میں بھاگ لے رہے کچھ لوگ ایک مدرسے میں گھس گئے. بھارتی سنچار مادھیموں کے انوسار دشہرے کی ریلی والی اس بھیڑ نے مدرسے کے بھیتر پہنچ کر نعرے لگائے اور ایک کونے میں پوجا بھی کی. استھانیہ پولیس کے انوسار دشہرے کی ریلی میں بھاگ لینے والی بھیڑ نے مدرسے کی سیڑھیوں پر چڑھ کر نعرے لگائے. انہوں نے مدرسے کا تالا توڑا اور اندر وے گھس گئے. اس کے بعد انہوں نے وہاں پر توڑ پھوڑ کی اور پھر مدرسے کے کونے میں کھڑے ہو کر پوجا پاٹھ کرنے لگے. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس گھٹنا سے سمبندھت ایک ویڈیو سامنے آیا ہے. اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیڑھیوں پر کھڑی بھیڑ مدرسے کے بھیتر گھسنے کی کوشش کر رہی ہے. بیدر کے مسلمان سنگٹھنوں نے اس گھٹنا کی کڑی نندا کی ہے. ان مسلمان سنگٹھنوں نے مانگ کی ہے کہ آروپیوں کو ترنت گرفتار کیا جائے. کانگریس کے نیتا راہل گاندھی کہتے ہیں کہ ان کو دیش کے بھیتر دو بھارت سویکار نہیں ہے. راہل گاندھی نے یہ بات ٹویٹ کر کے کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھارت جوڑو یاترا کے دوران میں ایک مہیلا سے ملا جن کے کسان پتی نے 50,000 روپے کے قرض کے کارن آتم ہتیا کر لی. راہل گاندھی نے کہا کہ ایک وہ بھارت ہے جہاں پر پونجی پتی متروں کو 6% ویاج پر رن دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی قرض معافی بھی ہے. وہیں پر دوسرے بھارت میں انداتاؤں کو 24% ब्याज पर कर्ज के कारण कष्टों से भरा हुआ जीवन गुजारना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ये दो भारत स्वीकार नहीं किए जाएंगे। राहुल गांधी के अनुसार एक देश में हमें दो भारत स्वीकार नहीं है। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर पिछले एक महीने से निकले हुए हैं। इस यात्रा के दौरान वे भारत के विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, जिनमें अधिकतर गरीब और बेरोजगार लोग शामिल हैं। ये लोग राहुल गांधी से मिलकर अपनी परेशानियां बताते हैं, जिनका उल्लेख वे समय समय पर अपने भाषणों और ट्वीट के माध्यम से करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पूरे विश्व में आर्थिक मंदी की चपेट की बात कही है। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार आईएमएफ की प्रबंध निदेशक ने अपने भाषण में कहा है कि इस समय पूरे विश्व में आर्थिक मंदी की दस्तक सुनाई दे रही है। उन्होंने कहा कि वे देश जो विश्व की एक तिहाई अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, उनको इस वर्ष और अगले वर्ष आर्थिक मंदी से गुजरना पड़ सकता है। उनके हिसाब से वैश्विक आर्थिक वृद्धि में गिरावट की आशंका पाई जाती है। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक का कहना था कि चीजों के बेहतर होने से पहले ही उनके खराब होने की आशंका दिखाई दे रही है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे भारत में फारसी भाषा को लेकर लोगों की बढ़ती रुचि के बारे में, और फिर बात करेंगे फिलिस्तीन के एक ऐसे कैदी की जो 19 वर्षों के बाद घर लौटा है, और अंत में चलेंगे भारत प्रशासित कश्मीर, जहां भारतीय गृह मंत्री की यात्रा के बाद राजनीतिक पार्टियों की आ रही प्रतिक्रियाओं के बारे में हमारे संवाददाता आपको बताएंगे।
भूतपूर्व मुख्यमंत्री और गुपकार अलायंस के
तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय लोगों के फारसी भाषा से प्रेम के बारे में। जानकारों का कहना है कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश के लोगों के लिए फारसी भाषा की किताबों का हिंदी भाषा में अनुवाद जरूरी है। इस संबंध में दिल्ली से IRIB के संवाददाता हसन अब्दुल मलिकी एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथ ही कायम रिजवी की आवाज में।
विश्व की लगभग 18% जनसंख्या भारत में रहती है। भारतीय समाज का ईरान के साथ प्राचीन संबंध रहा है और ऐतिहासिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और धर्म के संदर्भ में विभिन्न तरह के संबंध रहे हैं। फारसी भाषा के भारतीय प्रोफेसर का कहना है कि फारसी भाषा मानवता की संस्कृति को हमेशा जीवित रखेगी। भारतीय फारसी भाषा के कवियों, लेखकों और वैज्ञानिकों की कृतियों को बहुमूल्य और मूल्यवान मानते हैं।
खुद हिंदी जबान हाँ।
भारत में फारसी भाषा पर काम करने वाले एक प्रोफेसर का ये कहना है कि भारत के लोग फारसी भाषा को सीखने में काफी रुचि रखते हैं। भारत में विशेषज्ञ फारसी पुस्तकों और स्रोतों के हिंदी भाषा में अनुवाद को सांस्कृतिक संबंधों का विस्तार करने और इस देश की युवा पीढ़ी को ईरान की सभ्यता से परिचित कराने का एक बेहतरीन तरीका मानते हैं।
नस्लोई जदीद के आशनाई नदरन
पे भारत में ईरान के प्रतिनिधि का कहना है कि नई पीढ़ी जिसे फारसी भाषा के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, इस तरह की किताबें उन्हें फारसी सीखने और ईरान के बारे में जानने का अवसर प्रदान कराती हैं। فارسی بھاشا سے پریچت ہونے کے لیے بھارتی لوگوں وشیش کر چھاتروں کے لیے پچھلے 2-3 دشکوں میں آرین نام کی ایک ڈکشنری چھپی اور جس میں فارسی شبدوں کے ہندی، اردو اور انگریزی کے سمان شبدوں کا سنکلن کیا گیا۔ یہ بھارتی اپ مہادیپ میں فارسی پستکوں اور سوتوں کے چاہنے والوں کے وستار کی شروعات ہو سکتی ہے۔
اجداد ماں
فارسی بھاشا کے بھارتی کوی کا کہنا ہے کہ ہمارے پوروجوں نے سیدھے طور پر فارسی بھاشا سے کافی لابھ اٹھایا ہے۔ اس وشال اور بہت بڑی آبادی والے دیش کے لوگوں کی پہلی بھاشا ہندی ہے، لیکن ابھی تک بہت کم فارسی کاریوں کا اس بھاشا میں انواد کیا گیا ہے۔ بھارت کی آبادی 1 ارب سے ادھک ہے، اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ اس دیش کے لوگوں کی فارسی بھاشا میں کافی روچی ہے، ضروری ہے کہ فارسی بھاشا کی کتابوں کا ویاپک استر پر ہندی بھاشا میں انواد کیا جائے۔ دلی سے IRIB کے لیے حسن عبد المالکی کی رپورٹ۔
اور اب چرچا کرتے ہیں فلسطین کی۔ اویدھ ذی انوشاسن کی جیلوں میں قید ہزاروں فلسطینی قیدیوں میں سے ایک قیدی 19 سال بعد گھر لوٹا ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں فلسطین سے IRIB کے سمواددتا خالد صبرنا، ہمارے ساتھی اختر عباس کی آواز میں۔
نحن في انتظار وعلى موعد مع تحرر الاسير مهند كميل۔
ایک ایسا فلسطینی قیدی جو 19 برسوں تک اویدھ ذی انوشاسن کی جیل میں تھا، اس کے باپ سمیت بہت سارے رشتے دار اور جاننے والے اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ فلسطینی قیدی مہند کمیل کو اپنے پتا کے انتیم سنسکار میں شامل ہونے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ وہیں مہند کی ماں بھی کافی بیمار رہنے لگی ہیں۔ 6 سال سے اپنے بیٹے کو نہ دیکھ پانے کا دکھ ان کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ محنت کی ماں کہتی ہیں کہ 6 سال پہلے میری ہارٹ سرجری ہوئی تھی، انہی دنوں جب میرے بیٹے کو آتنکی اسرائیلی گرفتار کر کے لے گئے تھے، تب سے میں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا ہے۔ اس دوران باپ کا سایہ بھی اس کے سر سے اٹھ گیا اور بہت سارے پریوار کے لوگوں کا بھی۔
وصلنا الى
اتری ویسٹ بینک میں استھت جنین کے دکشن میں موجود القباتیا شہر نے اویدھ ذی انوشاسن کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اس شہر کے جیالے آتنکی اسرائیلی سینکوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ وہیں محنت کا وہ کمرہ جہاں سے وہ 19 سال پہلے گرفتار ہوئے تھے ایک بار پھر اپنے کمرے میں واپس آ رہے ہیں۔ فلسطینی جنتا اس کا ایک یودھا کی طرح سواگت کر رہی ہے۔
محنت اخوی بال2003 اجو تحمل دار الجيش۔
محنت کے بھائی بتا رہے ہیں کہ ان کے بھائی ورش 2003 میں اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی آتنکی اسرائیلی سینکوں نے حملہ کر دیا، پورے گھر کی گھیرا بندی کر دی۔ میرے بھائی محنت کو میرے بیمار ماں باپ کے سامنے کھینچتے ہوئے لے گئے۔ گرفتاری کے سمے آتنکی سینک ہوائی فائرنگ بھی کر رہے تھے۔
وبعد انتظار ساعات طویلہ
اس بیچ محنت فلسطینی جنتا کے زوردار سواگت کے ساتھ اپنے شہر القباتیا پہنچے۔ لوگ انہیں زمین پر آنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ عام جنتا کے ساتھ ساتھ ان کے پرتیرودھک بل کے ساتھی بھی ان کا اپنے انداز میں سواگت کر رہے تھے۔ محنت کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اپنے اللہ کا ساری چیزوں کے لیے شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے شہیدوں کی تلنا میں کوئی خاص کام انجام نہیں دیا۔ ہمارے راشٹر کو چاہیے کہ اپنے آپ کو آزاد سوچے تاکہ ہم صحیح اور پرتیرود کے راستے کو آگے بڑھا سکیں۔ محنت کی ماں کہتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا بیٹا میری زندگی میں گھر واپس لوٹ رہا ہے، بس اللہ اس سے خوش رہے۔ میری دعا ہے کہ سبھی قیدی آزاد ہو جائیں۔
المحرر محمد
بتا دیں کہ محنت کمیل ان 297 قیدیوں میں سے ہیں جو لگاتار 20 برسوں تک اویدھ ذی انوشاسن کی جیلوں میں قید رہے۔ 39 قیدی 25 سال سے ادھک اور 17 قیدی ایسے ہیں جو 30 برسوں سے زیادہ سمے سے اویدھ ذی انوشاسن کی جیلوں میں قید ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو 40 سال سے ادھک سمے سے جیلوں میں قید ہیں اور ابھی تک آزاد نہیں ہو سکے ہیں۔ محنت کا کہنا ہے کہ قیدی دیش کی آزادی کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ جیل میں قید ناصر ابو حمید کی استھتی کافی گمبھیر ہے، کبھی بھی ان کی شہادت کی خبر ہم تک پہنچ سکتی ہے۔
وقبل 19 عاماً
محنت نے 12 سال پہلے جیل کے اندر سے ہی اپنی منگنی کی تھی، اور جیل سے رہائی کے بعد پہلی بار وہ انہیں دیکھیں گے۔ فلسطین سے IRIB کے لیے خالد سبرنا کی رپورٹ۔
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت پرشاست کشمیر کا۔ بھارتیہ گرہ منتری امیت شاہ نے ابھی حال ہی میں کشمیر کا دورہ کیا۔ ان کے دورے کو لے کر راجنیتک پارٹیوں نے تیکھی پرتکریائیں دی ہیں، اس بارے میں وستار سے جانکاری دے رہے ہیں شری نگر سے ہمارے سمباددتا سپت محمد حسن۔
بھوتپور مکھیمنتری اور گپکار الائنس کے ادھیکش ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ بھارت کے گرہ منتری امیت شاہ نے جموں کشمیر کی یاترا کی، پرنتو جو ہماری آشائیں تھیں وہ اس پر پورے نہیں اترے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہم پر تو بہت سے ویکتوی جاری کیے، پرنتو زمینی استر پر کیا بدلاؤ آیا ہے اس بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ جو نیتیاں ان کے انوسار نئی دہلی کی موجودہ پرشاسن نے بنائی ہے ان کا انہیں کوئی بھی لابھ حاصل نہیں ہو رہا ہے، پرنتو وہ طاقت کے بل پر تمام لوگوں کو خاموش کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بار بار نئی دہلی کو یہ سمجھانے کا پریاس کیا کہ کشمیر ایک ڈیلیکیٹ ایشو ہے، اسے ڈیلیکیٹ لی ہی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، پرنتو ہماری بات نہیں مانی گئی۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ جموں میں ایک جن سبھا کو سمبوجت کر رہے تھے۔ اس بیچ جموں کشمیر عام آدمی پارٹی نے بھی ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ہی الفاظوں کو دہراتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو ہمارے امیدیں گرہ منتری پر تھی وہ اس پر پوری نہیں اترے۔ عام آدمی پارٹی کے پروکتا نے ایک سمباددتا سمیلن کو سمبوجت کرتے ہوئے کہا،
جی امیت شاہ جی آج آتے ہیں جموں اینڈ کشمیر، جموں اینڈ کشمیر کی امیدیں جاگ جاتی ہیں۔ ہر ایک انسان دیکھتا ہے ہوم منسٹر کی طرف، لیکن افسوس بہت زیادہ یہاں پہ جو ہے آج کل بے چینی ہے۔ بے چینی اس چیز کی ہے کہ ہمیں جو امید تھی، ہمیں جو آرزو تھی، وہ آرزو پوری نہیں ہے۔ امیت شاہ جی آج ہم آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے۔ امیت شاہ جی آپ کے یہاں کے بیانوں کو ہم ڈسیکشن کرنا چاہیں گے، اینڈ وی وانٹ لیٹ نو انٹائر جموں اینڈ کشمیر اینڈ انٹائر انڈیا، جس ہندوستان کو دکھانے کے لیے آپ نے یہاں ریلیز کی، جس ہندوستان کو کشمیر اور جموں بیچنے کے لیے آپ نے ریلیز کی، آج ہم اس چیز کو بے نقاب کر کے رکھیں گے۔ امیت شاہ جی آپ نے کہا کہ سیکیورٹی کے ایشو بہت اچھے ہو گئے ہیں 370 کے بعد، لیکن افسوس اسی دن جس دن آپ جموں میں ہوتے ہیں ہمارے یہاں کا DGP مارا جاتا ہے۔ کس سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں؟ جس دن آپ کشمیر میں ہوتے ہیں شوپین میں دو انکاؤنٹر ہوتے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں سیکیورٹی اچھی ہو گئی ہے تو ہم صاحب سے سوال پوچھتے ہیں، ہمارے پنڈت بھائی جو ہیں زمانے سے ان کو ٹینٹوں میں رکھا ہوا ہے دلی جموں ہر جگہ پہ، اگر سیکیورٹی ٹھیک ہو گئی ہے، سب چیز یہاں نارمل ہو چکا ہے، تو لا لیجیے ان کو اپنے گاؤں میں بسا دیجیے نا، کیوں ان کے لیے الگ چھوٹے چھوٹے وہ فلیٹس بنا رہے ہیں؟ اگر یہاں سیکیورٹی ٹھیک ہے، جس دن آپ بارہمولہ میں ریلی کرتے ہیں 25 ایئرز اولڈ آصف پولیس والے کی گولی سے سوات میں مارا جاتا ہے، ہوم منسٹر صاحب اگر آپ کا وزٹ ایک ماں کے بچے کو چھین لیتا ہے تو بہت افسوس کی بات ہے، بہت شرم کی بات ہے۔
ادھر جموں کشمیر میں دھارمک گٹھوں کے سب سے بڑے گٹھ بندھن متحدہ مجلس علماء نے ایک بار پھر جموں کشمیر پرشاسن سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوسر پر میروائز عمر فاروق جو متحدہ مجلس علماء کے ادھیکش بھی ہیں کو رہا کیا جائے۔ متحدہ مجلس علماء کے پروکتا نے کہا کہ ہم ایک بار پھر موجودہ پرشاسن سے یہ مانگ کر رہے ہیں کہ وہ میروائز عمر فاروق کی خانہ نظر بندی سماپت کریں۔ سپت محمد حسن، ریڈیو تہران، سرینگر۔
دوستوں راجنیتک چرچا کا یہ دینک کارکرم اب یہیں سماپت ہوتا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو اب پیش ہے آپ کا اپنا من پسند کارکرم پتر سنسار۔
پتر سنسار۔
दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है। अपने भैया रविश और दीदी
मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, हमें आशा है कि आप जहां कहीं भी होंगे सकुशल होंगे और अपना मन पसंद कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे।
बिल्कुल, और इसी आशा के साथ हम आज के भी कार्यक्रम को आपके लिए एक खूबसूरत कार्यक्रम बनाकर पेश करेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो सहयोग होगा वो आपका होगा, आपके कमेंट्स का होगा, आपके विचारों का होगा, आपके पत्रों का होगा, और सबसे ज़्यादा आपकी मीठी मीठी जो सुनने की ताकत है और कहने की जो ताकत है उसका होगा।
जी, तो शुरू कर रहे हैं ईमेल से। ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से तुर्गेश नागनपुरे, और इन्होंने अपनी बहुत बड़ी लिस्ट भेजी है। राधेश्याम नागनपुरे, भावना बिंदु, गोलू कुसुम्बाई और सूरज कुमार ढाक से, और नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, बेबी कनक और भावना वर्मा। मैंने ये नाम इसलिए पढ़े ताकि इन लोगों को समझ में आए कि उनका पत्र पढ़ा गया है एक ही नाम से, दुर्गेश नागनपुरे के नाम से। तो लिखते हैं, सर्वप्रथम हमारी ओर से रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की पूरी टीम और रेडियो तेहरान हिंदी सेवा के उद्घोषक भाई और बहन मरियम मेहरदादी जी को प्यार भरा सलाम और आदाब। हमें आपके रेडियो तेहरान से प्रसारित सभी कार्यक्रम बेहद लाजवाब लगते हैं। हम परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर आपके सब कार्यक्रमों का भरपूर आनंद लेते हैं। शुक्रवार का कार्यक्रम पत्र संसार बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में दादा आनंद मोहन बैन जी का पत्र सुनकर बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में दादा आनंद मोहन बैन जी ने हम सभी श्रोताओं को ये बताया कि बहन सुतपा बैन जी की स्मृति में उन्होंने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। दीदी मरियम मेहरदादी जी ने हमें इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। आशा करते हैं कि दादा आनंद मोहन बैन जी को हमें उपहार स्वरूप कुछ पुरस्कार जरूर भेजेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका दुर्गेश नागनपुरा जी, और इस आशा के साथ कि आपके परिवार में और लोगों की वृद्धि हो और बड़ा परिवार आपका हो, जो नाम है वो नाम जो है वो अगले कार्यक्रम नहीं मतलब आइंदा वर्षों में जस्ट डबल हो जाए। और इसी तरह अपनी मोहब्बत, अपना प्रेम, अपना स्नेह आप रेडियो हिंदी तेहरान के प्रति व्यक्त करते रहा कीजिए। और आपका वाकई बहुत बहुत वास्तव में धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमारे इतने पुराने श्रोता हैं और इतने वर्षों से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा अपनी जो नेक दुआएं हैं, जो अपनी मनोकामनाएं हमारे प्रति जो मोहब्बत है आपका, वो हमको जो है पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता ही है कि अब हम कहाँ जाने वाले हैं। वैसे जाने वाले नहीं हैं, हमारे बगल में ही दीदी मेहरदादी जो है मरियम मेहरदादी बैठी हुई हैं, लेकिन अब हमें वो ले जाने वाली हैं इन किसके जरिए, सांस्कृतिक खबरों के जरिए। तो चलते हैं दीदी के पास और देखते हैं कि आज वो घुमा कहाँ रही हैं हम लोगों को।
जी, आज हम संग्रहालय जा रहे हैं। ईरान के उत्तर पूर्वी शहर मशहद में आठवें शिया इमाम रजा के रोजे के पश्चिम में एक ऐतिहासिक संग्रहालय है, और जो मानव शास्त्रीय संग्रहालय अस्तान कुद्स रजवी के नाम से प्रसिद्ध है। यह संग्रहालय 1793 में एक सार्वजनिक स्नानागार हुआ करता था और 1990 में ये एक सुनसान जगह में बदल गया, लेकिन मई 1997 में इसे ईरान में एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में पंजीकृत किया गया। संग्रहालय की मरम्मत 2006 में की गई थी और इसे अस्तान कुद्स रजवी के मानव विज्ञान संग्रहालय के रूप में जनता के लिए खोल दिया गया था। इस स्मारक की विशेषताएं और टी हाउस पेंटिंग्स ईरान की सबसे बेजोड़ कलाकृतियों में से एक हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और ये बात आपको और अपने श्रोताओं गणों को बताना ज़रूर चाहूँगा कि अगर आप ईरान आते हैं अपनी यात्रा में, और ज़रूर आइए, इसलिए कि ईरान में आपको वो तमाम चीज़ें, खासकर हमारे जो भारतीय और पाकिस्तानी श्रोता हैं उनको वो तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी आँखों के ज़रिए, यानी अपनी आँखों से वो देख पाएंगे जिनको वो किताबों में पढ़ते हैं।
जी।
यानी बहुत सारी ऐसी जिज्ञासा होती है इंसान, जो भारत में लोग रहते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो ईरान में आज भी जो भारतीयों से जुड़ी हुई चीजें हैं वो यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। और विशेषकर अगर आप बात करें भारतीय मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान, उनकी सांस्कृतिक चीजों से, उनकी जो उनकी जिंदगी है, जो उनका धार्मिक विश्वास है, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें, यानी बड़े बड़े लेखक इस्लामी जो किताबें हैं उसके यहाँ पर हैं ईरान के अंदर, उनकी हाथों की लिखी हुई किताबें ईरान में मौजूद हैं। इसके अलावा इस्लामिक धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ के संग्रहालयों में मौजूद हैं। जब भी आप ईरान आइए, इसके बारे में ज़रूर पता कीजिए और उन्हें देखने ज़रूर जाइए।
जी,
तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम जो है आपका मनपसंद कार्यक्रम है, और ये जानते नहीं हैं बल्कि ये विश्वास है आपका भी हमारा भी, और इसका एक कारण ये है कि हम अपने जो श्रोतागण हैं उनसे डायरेक्ट बात करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनकी बातों को दूसरे श्रोताओं तक पहुंचाते हैं, और उनके जो अच्छे अच्छे हमको जो सलाह देते हैं वो उसको हम स्वीकार करते हैं और अपने कार्यक्रमों में बदलाव भी करते हैं। तो इस कार्यक्रम में आप भी भाग ले सकते हैं हमारे ईमेल के ज़रिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए हमें आप संदेश भेजिए, अपने सुझाव भेज दीजिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। तो आप दीदी के पास देखिए, एक और रास्ता है कार्यक्रम का हिस्सा बनने का, वो है हमारी खबरों पर, यानी साइट पर जाइए, हमारी खबरें पढ़िए और उस पर कमेंट्स कीजिए, और आप दीदी वही करने जा रही हैं।
जी, लेबनान को इज्जत प्रतिरोध की वजह से मिली है न कि इस पर। अहमद सरन लिखते हैं, ईरान में कला पैदा करने के लिए शैतानी राजद्रोह कर रहा है अमेरिका। हम इससे अधिक की उम्मीद नहीं करते हैं क्योंकि इमाम खुमैनी ने कहा कि अमेरिका शैतान का आभारी है। अनुभव के अनुसार सभी अमेरिकी शासकों को सबसे बुराइयों के बीच चुना गया है, अन्यथा वे संयुक्त राज्य में उच्च पद तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमने अपने राष्ट्रीय नायक जनरल सुलेमानी की हत्या के संबंध में मिक पोम्पियो की प्रतिक्रिया देखी है, और ये लोग अनुवांशिक रूप से अपराधी और दुष्ट हैं। उनकी कोई नैतिक गरिमा नहीं है क्योंकि वे इंसान नहीं हैं। अमेरिका के शर्मनाक इतिहास के दौरान उन्होंने लाखों निर्दोष लोगों की हत्याएं की हैं।
देखिए, इस पे एक बात ज़रूर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो जो भी इस वक्त रेडियो हिंदी तेहरान सुन रहे हैं उन तमाम श्रोताओं के लिए, देखिए एक ईरान में जो थोड़े बहुत अराजकता हो रही है और जिस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है, उसके लिए एक बहुत ही साफ शब्दों में और एक उदाहरण आपको पेश करते हैं। एक चादर है बिल्कुल सफ़ेद होती है, उसके ऊपर छोटा सा भी धब्बा लगता है तो वो दिखाई देती है, और एक चादर होती है जिसके अंदर धब्बा ही धब्बा होता है, सफ़ेद है लेकिन पूरा धब्बा है, गंदी है, उसके ऊपर जितने भी दाग हों हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगे। तो ईरान में क्या है कि यहाँ पर लोगों को आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, अपनी बात रखने की आज़ादी है, ये पूरी एक सफ़ेद चादर की तरह है। यहाँ पर एक छोटा सा भी, एक आदमी भी खड़ा होकर समाज में अपनी आवाज़ अगर उठाता है तो उस आवाज़ को सुना जाता है और दुनिया तक पहुँचाई है, लेकिन दुनिया क्या है, उस आवाज़ को गलत तरीके से पेश करती है। आज ईरान में यही है, लोग जवान हैं, अपनी बात कर रहे हैं, यहाँ की सरकार उनकी बातों को सुन रही है। जो पश्चिमी मीडिया है, जो दुश्मन मीडिया है, जिस तरह का प्रचार कर रही है, आपसे फिर मैं आपको निमंत्रण देना चाहूँगा कि आप ईरान आइए, यहाँ के स्थिति को देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ की जनता और बाहर की जो मीडिया के द्वारा प्रचार और प्रसार किया जा रहा है उसमें कितना अंतर है। तो इस एक ब्रेक के बाद फिर चलते हैं दीदी के पास और मालूम करते हैं दीदी अभी क्या है आपके पास।
जी, आज हमारे पास फिर से श्रोता के विचार जानने की कोशिश करते हैं, और आज हम नाम नहीं बताएंगे, वो खुद अपना नाम बताएंगे। तो चलिए सुनते हैं आज कौन है हमारे साथ।
मैं पूजा वाजपेयी आज आपसे कहना चाहती हूँ कि आपका कार्यक्रम लगभग मैं 4 साल से सुन रही हूँ व देख भी रही हूँ, और आज ये बताते हुए मुझे बहुत ही प्रशंसा हो रही है कि आपका जो समाचार है जब भी मैं देखती हूँ या मेरा परिवार देखता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। उसकी वजह यह है क्योंकि इसमें जो आपकी खबरें होती जो भी न्यूज होती है वो बहुत ही सच्ची न्यूज होती है, जो कि हम क्योंकि हमारे तक के जो भी खबरें आती हैं, आती तो हैं खबरें काफी सारी आती हैं, लेकिन सारी खबरें काफी हद तक के मसालेदार होती हैं, काफी चटपटी खबरें यहाँ पर छापते हैं। आपकी जो खबरें होती हैं वो सच्ची होती हैं। साथ ही साथ हम बता दें आपको कि विश्व में यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो भी हो रहा है, अमेरिका इसराइल में जो भी हो रहा है, जितना भी अपराध हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी हम सुनते हैं अगर किसी और चैनल के माध्यम से थोड़ी बहुत खबर आती है वो भी सच्ची खबर नहीं आती, उसमें भी लगता है कि पता नहीं सच है कि नहीं है, लेकिन जब भी हम आपका चैनल सुनते हैं तेहरान रेडियो तब ऐसा लगता है कि हाँ ये न्यूज है तो ये पक्का खबर है और ये सच्ची होगी। तो हमें क्या हमारा पूरा परिवार के हमारे जितने भी जानने वाले हैं जो भी हमारे आज जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं जो भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए वो जितने भी देखते हैं तो उन्हें भी बहुत ही अच्छा लगता है कि ये एक ऐसा चैनल है जहां से हमें एक पूरी पक्की खबर प्राप्त हो रही, सच्ची खबर प्राप्त हो रही। साथ ही साथ आज मैं ये भी बताना चाहूंगी आपको कि भारत के चारों ओर जो भी हमारे लोग आपके लोग वहां पर हैं, जितने भी काम करते हैं उनके काफी सारे प्रशंसक बन चुके हैं, क्योंकि भारत में भी आपने अच्छा नाम कमा रखा है, अच्छे अपनी पहचान बना रखी है।
तो दोस्तों ये थी हमारी प्रिय श्रोता पूजा वाजपेयी जी और जिनके बेहतरीन और अच्छे विचार आपने सुने और हमको भी काफ़ी इनके विचार पसंद आए और इस आशा के साथ कि आगे भी वो हमको इसी तरह के सुझाव और हमारी खबरों के बारे में हमारे जो प्रोग्राम है उनके बारे में जो उनके नज़रिए हैं जो उनका दृष्टिकोण है उससे अवगत कराती रहेंगी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और चलते हैं दीदी के पास। दीदी बहुत गौर से मुझे देख रही हैं शायद।
जी नहीं वैसे मैं देख रही हूँ हमारे पास थोड़ा सा समय बाकी है तो हम एक और श्रोता का कमेंट इस्तेमाल करते हैं। यूक्रेन युद्ध में क्या रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है? इस पर मोहम्मद अली लिखते हैं, अगर पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं तो उनका निशाना यूक्रेन नहीं बल्कि अमेरिका होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर परमाणु हथियार गिराने के लिए अमेरिका ने किस तर्क का इस्तेमाल किया? उन्होंने कहा कि साइकोज द्वारा देश चलाया जा रहा है जिसे तुरंत रोकने की जरूरत है। क्या आज के यूएस में ऐसा नहीं है?
देखिए ऐसा है कि पूरी दुनिया इस बात को जानती है भली भांति कि पहली बार दुनिया में परमाणु हथियार को किसने इस्तेमाल किया था। और अब जब जो कोई चोर होता है ना दीदी तो उसमें ये होता है कि चोर दूसरों को भी यही शक करता है कि वो चोरी करेगा, या किसी तरह को झूठा होता है वो दूसरों पर भी यही हमेशा शक करता है कि चोरी करेगा, झूठ बोलेगा। तो ये जो चीज़ है ये कि भाई इस्तेमाल करेगा नहीं करेगा, सबसे पहली चीज़ तो हम शांति चाहते हैं, रूस हो चाहे कोई भी सबसे अपील करते हैं कि शांत रहें और ये परमाणु हथियार जो है ये दुनिया से ख़त्म होना चाहिए, चाहे वो अमरीका हो चाहे रूस हो चाहे जिसके पास भी दुनिया में परमाणु हथियार हैं, वो ये विनाशकारी हथियार जो ईरान का स्टैंड है कि इसको पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए, इसका वजूद ही नहीं रहना चाहिए, अस्तित्व ही नहीं रहना चाहिए इन हथियारों का, क्योंकि ये हथियार अगर इस दुनिया में रहेंगे इस धरती पर रहेंगे तो कभी ना कभी इनका प्रयोग होगा जो जिससे सिर्फ और सिर्फ विनाश फैलेगा। तो दीदी अब हमारे पास समय नहीं है तो हम अपने प्रिय श्रोताओं से इजाज़त चाहते हैं, अपने भैया रविश और दीदी मरियम मेहरदादी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों भी आपने अपना मनपसंद कार्यक्रम सुना पत्र संसार। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और अब सभा के अंत में पेश है कार्यक्रम विज्ञान की डगर।
विज्ञान की डगर।
दोस्तों कार्यक्रम विज्ञान की डगर नामक एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में ईरान और दुनिया में होने वाली प्रगति के विषय पर चर्चा करेंगे। مریم مہردادی اور اختر عباس کا سلام سویکار کیجیے۔
مشہد یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے شودھکرتاؤں نے حال ہی میں ایک ایسی دوا وکست کرنے میں سفلتا حاصل کی ہے جو گیسٹرو انٹیسٹائنل رکت سراؤ کو روکتی ہے۔ اس وشودیالے کے ایسوسی ایٹ پروفیسر کے انوسار، جنہیں پہلے ایرانی چکتسا اتسو ارتھات طب سینوی میں اس دوا کے اتپادن کے لیے پیٹنٹ کے پسندیدہ پیٹنٹ نرماتا کے روپ میں مانیتا دی گئی تھی، ایک واڑجک پیٹنٹ کا اتپادن کر کے یہ دوا ایک پراکرتک پدارتھ سے بنی ہے۔ سامگری اور پریوگ شالا انوسندھان کے بعد اور ہومیو اسٹیسس نامک کھادیہ ایوم اوشدھی دوارا چکتسکی روپ سے انمودت کیے جانے کے بعد بڑے پیمانے پر اس کا اتپادن کیا جا رہا ہے۔
اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہومیو اسٹیسس کسے کہتے ہیں؟ اس کو بیان کرنے کے لیے پہلے ہم ایک چھوٹی سی بھومیکا پیش کرتے ہیں۔ ہم بھوکے ہیں اور ہم کھاتے ہیں کیونکہ ہمارا شریر ہمیں چیتاونی دیتا ہے کہ ہمارے پاس پوشک تتووں کی کمی ہے۔ ہم پیاسے ہیں اور ہم پیتے ہیں کیونکہ ہم نرجلی کرن کی پرکریا میں ہیں، اور ہمارے شریر کو اچھی طرح سے کام کرنے کے لیے پانی کی آوشکتا ہوتی ہے۔ ہماری ناڑی اور شوسن ایک اتینت سکریہ استھتی سے تیز ہوتے ہیں اور بعد میں ہم شانت ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم اس استھتی کے سمپرک میں آ جاتے ہیں جس سے ارجا کا اپیوگ کرنا پڑتا ہے۔
اگر ہم ان سبھی رشتوں کا پالن کرتے ہیں تو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ان سبھی میں ہم ایک ایسی پرکریا کا سامنا کر رہے ہیں جو چاہتی ہے کہ ہمارے شریر میں سنتولن بنائے رکھیں۔ یہ سنتولن ہمارے شریر کے سموچت کاریہ کے لیے آوشک ہے، جس کے ساتھ ہم اسے پراپت کرنے کے لیے وبھن پرکریائیں کرتے ہیں۔ ہم شریر میں ہومیو اسٹیسس دوارا شریر میں سکریتا کی پروتی کو سمجھتے ہیں اور لگاتار سنتولن کی استھتی کی تلاش کرتے ہیں، اس طرح سے کہ ہمارے شریر کی کوشکائیں بچ سکیں ایک استھر آنترک سنرچنا کو بنائے رکھنے کے ذریعے۔
شودھکرتاؤں کے انوسار پاؤڈر کی شکل میں بننے والی اس دوا کا استعمال گیسٹرو انٹسٹائنل بلیڈنگ میں کیا جاتا ہے۔ اینڈوسکوپک پرکریا کے دوران روگیوں کے آماشے سمبندھی مار کے رکت سراو استھل کا نردھارن کرنے کے بعد ہومیوسٹیسس پاؤڈر کو اس کے ولائک کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے رکت سراو استھل پر اینڈوسکوپک کیتھیٹر کے مادھیم سے ڈالا جاتا ہے، جسے رکت سراو استھل سے 2 ملی میٹر دور رکھا جاتا ہے۔ اس دوا کو 5 سے 40 سیکنڈ تک استعمال کرنے کے بعد بلیڈنگ پوری طرح سے بند ہو جاتی ہے۔ اس کا اپیوگ سرجیکل رکت سراو کو نینترت کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، جیسے کہ سیزرین سیکشن یا توچا پر گھاؤ اتیادی کے معاملوں میں بھی اس کا پریوگ کر سکتے ہیں۔ شودھکرتاؤں کے انوسار شودھ کے دوران ابھی تک اس دوا کا کوئی خاص سائڈ افیکٹ نہیں پتا چلا ہے۔ اس کا اپیوگ سبھی پرکار کے گیسٹرو انٹسٹائنل رکت سراو گھاؤں یعنی سوجن اور سنکرامک کولائٹس کو چھوڑ کر گیسٹرو انٹسٹائنل بلیڈنگ، ٹیومر، پوسٹ پولی پیکٹومی بلیڈنگ ERCP کے بعد سنکٹو روٹومی بلیڈنگ اور DP-BSP بلیڈنگ کے لیے کیا جاتا ہے۔
ایرانی آوشکارک بھی ماس پیشیوں کو مضبوط بنانے کے لیے ایک میڈھک جیسا تیراکی اپکرن کی ڈیزائننگ اور نرماڑ میں سفل رہے۔ میڈھک تیراکی سیمولیٹر سب سے پورن اپکرن ہے جو مانو شریر پر پرشکشن چکر کو لاگو کرتا ہے، کیونکہ پرشکشن وگیان اور کینیمیٹکس کے لحاظ سے یہ شریر کے سبھی ایگونسٹ اور پرتپکشی ماس پیشیوں میں کیندرت آئیسو سینٹرک سنکوچن کا کارن بنتا ہے۔
اس ڈیزائن کا اپیوگ سوئمنگ پول اور پانی کے استھانوں، پنرواس کیندروں اور پرشکشن کیندروں میں، کلبوں میں ایروبک یا انیروبک پرشکشن اپکرن کے روپ میں، اور ٹریڈ میل اور فکس سائیکل کے اپیوکت وکلپ کے روپ میں کیا جاتا ہے۔ جلیے پریاورن کے باہر تیرنے کے لیے مینڈک کو مضبوط اور پرشکشت کریں۔ सुपर सप्लाई चक्र के रूप में भी सभी मांसपेशियों का उपयोग करके समय बचाएं। कैलोरी सेवन को अधिकतम करें, हाइपरट्रॉफी को अधिकतम करें, एनाबॉलिक हार्मोन के स्तर को अधिकतम करें और कैटाबॉलिक हार्मोन को कम करें। ओवर ट्रेनिंग को रोकें, तंत्रिका मांसपेशियों के समन्वय को बढ़ाना, स्वास्थ्य उपकरण के रूप में दैनिक उपयोग और थकावट व ओबाऊपन को रोकना इस योजना के कुछ लाभ हैं।
दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने स्टीविया की खेती में फसल की मात्रात्मक और गुणात्मक उपज बढ़ाने में सफलता हासिल की है, जो चीनी की जगह मिठास के उत्पादन का एक प्राकृतिक स्रोत है। इस परियोजना के शुरू करने वाले के अनुसार प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के लिए प्रतिवर्ष खपत की जाने वाली चीनी की मात्रा लगभग 18.5 किलोग्राम है। अपने चीनी के सेवन को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका प्राकृतिक मिठास है, जो स्टीविया से हासिल किया जाता है।
स्टीविया दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी पौधा है, जिसे दुनिया में कैलोरी मुक्त और चीनी मुक्त मिठास के कारण माना जाता है, और हाल ही में ईरान के कुछ हिस्सों में इसकी खेती की गई है। सदियों से दक्षिणी अमरीकी देशों जैसे ब्राज़ील में स्वीटिया पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल प्राकृतिक स्वीटनर के तौर पर होता आ रहा है। आज स्टीविया पूरे विश्व में पाया जाता है और मीठे के प्राकृतिक विकल्प के तौर पर मशहूर है।
ये नेचुरल स्वीटनर स्टीविया रिवादियाने के पौधे से हासिल होता है। इसमें मीठा प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और ये साधारण चीनी से 200 गुना अधिक मीठा होता है। इसकी ये खासियत दो मिश्रणों की वजह से है, पहला स्टीवियोसाइड और दूसरा रिबोडियोसाइड। हालांकि स्टीविया में पोषक तत्व नहीं होते, जिसका मतलब ये है कि ये अपनी डाइट में कैलोरी की मात्रा नहीं बढ़ाता, जिसके चलते ये चीनी की जगह अच्छा विकल्प हो सकता है। इस पदार्थ की मिठास चीनी की तुलना में 300 से 350 गुना अधिक है, जबकि ये कैलोरी मुक्त है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं बताया गया है।
बाजार में स्टीविया टैबलेट और पाउडर के कई ब्रांड मौजूद हैं। इनमें से ज़्यादातर चखने के कुछ देर के बाद कड़वे लगते हैं, क्योंकि इसमें स्टीवियोसाइड पाया जाता है। अगर आपको इसका स्वाद पसंद न आए तो आप स्टीविया पाउडर के ऐसे ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें सिर्फ रिबोडियोसाइड का इस्तेमाल किया गया हो, जिसका स्वाद कड़वा नहीं होता।
चाय और कॉफ़ी में चीनी की जगह स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्टीविया ज़्यादा मीठी होती है, इसीलिए आपको प्रयोग करने की ज़रूरत पड़ सकती है कि कितनी मात्रा आपके लिए सही है। ज़्यादातर एक चुटकी स्टीविया आपको एक चम्मच चीनी के बराबर मीठापन देती है।
स्टीविया पाउडर को ब्रेकफास्ट सीरियल या दही में भी डालकर खा सकते हैं। आइसक्रीम या फलों से बने डेजर्ट बनाने में चीनी की जगह स्टीविया का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। एक अध्ययन में पाया गया है कि टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित लोगों द्वारा स्टीवियोसाइड का सेवन करने से उनके खाने के बाद के ब्लड ग्लूकोज लेवल में कमी देखी गई है।
एक लैब स्टडी में पाया गया है कि सुक्रोम के मुकाबले स्टीविया खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल में अधिक गिरावट लाता है। स्टडी में शामिल प्रतिभागियों ने पाया कि स्टीविया के इस्तेमाल से भी वो उतना ही भरा भरा महसूस कर रहे थे जितना चीनी से, जबकि चीनी के मुकाबले स्टीविया में ना के बराबर कैलोरी पाई जाती है। इससे पता चलता है कि स्टीविया को चीनी के बदले इस्तेमाल करने से डायबिटीज ग्रसित लोग अपना वजन आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं।
जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड में छपे एक आर्टिकल में डायबिटीज़ के दौरान स्वीटिया का इस्तेमाल करने के प्रभावों की समीक्षा की गई। इसमें पाया गया कि स्टीविया डायबिटीज़ ग्रसित चूहों के ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है और साथ ही उनका इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ पाया गया। इंसानों पर स्टीविया के एंटी डायबिटिक्स प्रभावों के बारे में फिलहाल अधिक रिसर्च की ज़रूरत है ताकि एक साफ तस्वीर हमारे सामने आ सके। हालांकि अब तक हुई किसी भी अध्ययन में स्टीविया के बुरे प्रभाव सामने नहीं आए हैं। इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि स्टीविया को चीनी का विकल्प मानना खोज के लायक विषय हो सकता है।
एक वैज्ञानिक उपलब्धि में शोधकर्ताओं ने एक सदी पुरानी पहेली को सुलझाने में मदद हासिल की है कि विरासत में मिली अस्थि मज्जा विकारों के लिए कौन से उत्परिवर्तन जिम्मेदार हैं। इस नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दुर्लभ अस्थि मज्जा विकार वाले 5 परिवारों के 16 भाई बहनों के रक्त के नमूनों का विश्लेषण किया और पाया कि वे सभी SAMD9 या SAMD9L जीन में जर्मलाइन म्यूटेशन करते हैं। ये विकार मोनोसोमी 7 के साथ माइलोडिसप्लासिया या ल्यूकेमिया सिंड्रोम है, जिसे पारिवारिक मोनोसोमी 7 सिंड्रोम भी कहा जाता है। 3 परिवारों में अध्ययन में ये मिला कि स्वस्थ माता पिता के जीन में उत्परिवर्तन हुआ। जर्मलाइन म्यूटेशन हर कोशिका के DNA में मौजूद होते हैं और आमतौर पर विरासत में मिलते हैं।
इस अध्ययन से पता चला है कि जर्मलाइन म्यूटेशन वाले कुछ बच्चे जिनके पिता में SAMD9 या SAMD9L म्यूटेशन थे और जो पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए उम्मीदवार थे, वे अपने आप ठीक हो जाते हैं और उनका ब्लड फंक्शन अपने आप ठीक हो जाता है और उन्हें अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है।
निष्कर्ष ये भी बताते हैं कि SAMD9 या SAM9L कैंसर के लिए अति संवेदनशील जीन हैं, जिन्हें अनुवांशिक परामर्श और अनुवांशिक जांच में माइलोडिसप्लासिया वाले बच्चों के लिए एक जोखिम कारक के रूप में माना जाना चाहिए। इस पहेली का उत्तर कुछ बच्चों को ल्यूकेमिया और अस्थि मज्जा विकारों के उपचार के रूप में अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के जोखिम और लागत से बचने में मदद कर सकता है।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, हमारा आज का प्रयास आपको कैसा लगा इस बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। तो इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। खुदा हाफिज़।